हवेली। सुबह का वक्त। हवेली के आंगन में सुबह की धूप हल्की सी सुनहरी परत की तरह फैली हुई थी। पुरानी हवेली की दीवारें दिन के उजाले में भी एक अजीब सी खामोशी लिए खड़ी थीं, जैसे हर ईंट पर पुराने राज जमा हों। आंगन के बीचोंबीच रत्ना देवी अपने बड़े नक्काशीदार लकड़ी के झूले पर बैठी थीं। झूला धीमे धीमे हिल रहा था, एकदम शाही अंदाज में। उनके हाथों में चमकता हुआ चांदी का पत्ता पंखा था, जिसे वो बड़ी ठहराव वाली चाल से हिला रही थीं। उनके पैर धूप में हल्की चमक लिए हुए थे और मधु नीचे बैठे उनके तलवे दबा रही थीं, सावधानी से, डर के साथ, जैसे दबाव कम या ज्यादा होने पर भी डांट पड़ना तय हो। रत्ना देवी की आंखें धारदार थीं। कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लेना ही काफी था, किसी की नीयत, चाल और छुपी बातें समझने के लिए। कुछ पल चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी धीमी मगर अधिकार भरी आवाज में कहा, मधु, ये छोड़, कुछ पूछना था। मधु घबराकर तुरंत हाथ हटाती है। जी? रत्ना देवी ने पंखा हल्का झुलाते हुए कहा, ये बता, बहू कहाँ है? सुबह नाश्ता करके ना दिखी, सब ठीक तो है? उनकी आवाज में चिंता कम, शक ज्यादा था। मधु ने नीचे देखते हुए कहा, जी सब ठीक है मालकिन, बहू कमरे में ही है। रत्ना देवी ने हल्का सा हूं कहा। उनके चेहरे पर वही रॉयल एटीट्यूड, जैसे जो भी कहा जाए आखिरी फैसला वही करती हैं। फिर उन्होंने आदेश जैसा कहते हुए कहा, अच्छा उसे बुला ला, कुछ कहना है अभी। मधु तुरंत खड़ी हुई, साड़ी ठीक की और तेज कदमों से अंदर चली गई। श्यामली के कमरे में। श्यामली अपने कमरे में बैठी थी। वो खिड़की के पास नहीं, बिस्तर के किनारे बैठी थी, दोनों हाथ कसकर दबाए हुए, जैसे रात की बची गर्मी अब भी उसकी नसों में बह रही हो। उसके गाल पर रात का निशान हल्का पड़ गया था, पर मन का तूफान नहीं। मधु दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, बहूजी, मालकिन बुला रही हैं आंगन में। श्यामली हल्का सा चौंकी, कुछ पल सांस संभाली, फिर खड़ी हुई, अभी आती हूँ। उसकी चाल में एक अजीब सी हिचक थी, न रात का डर पूरी तरह गया था, न सुबह की ठंडक में कोई राहत मिली थी। आंगन। श्यामली धीरे धीरे आंगन की ओर आई। रत्ना देवी झूले पर ही थीं, सीधी शाही पीठ लिए हुए। मधु खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। श्यामली ने थोड़ा झुककर कहा, माँ, आपने बुलाया था? रत्ना देवी ने उसे ऊपर से नीचे देखा, एक पल को, ध्यान से, जैसे कपड़े नहीं उसके चेहरे की हर छोटी हरकत पढ़ रही हूँ। फिर उसी रॉयल टोन में बोली, हाँ बुलाया था, बैठो। श्यामली चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गई। हवेली की हवा में हल्की सी कड़क महसूस हुई। रत्ना देवी का एटीट्यूड हमेशा से ऐसा ही था, पर आज श्यामली को थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा था। कुछ पल बाद रत्ना देवी बोली, देखो बहू, हमारे घर में हर साल एक परंपरा है। पूरा परिवार एक दिन राजसी तरीके से तैयार होता है और एक बड़ी सी फैमिली फोटो खींचती है। उनकी आवाज में गर्व था और साथ ही आदेश वाला ठंडा अधिकार भी। उन्होंने आगे कहा, दो दिन बाद वही दिन है, तुम भी पूरी तरह रानी जैसी तैयार होकर आना। उन्होंने जानबूझकर रानी शब्द पर थोड़ा जोर दिया। मधु की गर्दन डर से और झुक गई। श्यामली हल्का सा सिर हिलाते हुए बोली, जी माँ, मैं तैयार रहूंगी। रत्ना देवी ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ कर कहा, रानी बनना सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, चलन से भी होता है। सीधे बैठना, नजरें नीचे नहीं, सामने रखकर बात करना और अपनी जगह समझना भी। श्यामली कुछ कह नहीं पाई, उसे इतनी बातों में छुपा हल्का सा तंज भी महसूस हुआ। रत्ना देवी ने फिर कहा, किसी भी चीज की कमी लगे, कपड़े, गहने, चूड़ियां, तुरंत बता देना, आज ही देख लेना। मैं नहीं चाहती कि फोटो में मेरी बहू कहीं कम लग जाए। नौकरानी मधु ने तुरंत कहा, जी मालकिन, मैं बहू जी को सब दिखा दूंगी। रत्ना देवी ने मधु की तरफ देखा, एक ऐसी नजर जिसमें कहने को कुछ नहीं पर समझने को बहुत कुछ था। फिर श्यामली की तरफ देखते हुए धीमे पर साफ शब्दों में बोली, बस ये ध्यान रहे बहू, हमारे घर की हर चीज एक मर्यादा में होती है और तुम्हें भी उसी मर्यादा में रहना है। उनकी बात सुनकर श्यामली का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि उसे लगा ये शब्द सिर्फ परंपरा के लिए नहीं कहे गए, कुछ और मतलब भी था, पर वो चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, जी माँ, जैसा आप कहें। रत्ना देवी ने पंखा बंद किया, धीरे से, ठहराव से, जैसे बातचीत खत्म हो चुकी हो, और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। नौकरानी तुरंत रास्ता दिखाने को आगे बढ़ी। श्यामली उठी, हल्की सी नम्रता से झुकी और वापस अंदर की ओर चली गई। उसकी चाल शांत थी, पर मन में वही भारीपन, रात की कहानियां, गहरी सांसें और रत्ना देवी की सख्त निगाहें सब एक साथ बंद कर उसके दिल पर बैठ गई थीं। आंगन से जाते हुए रत्ना देवी ने एक पल उसे जाते हुए देखा, जैसे वो सिर्फ बहू नहीं, एक पहेली हो जिसे सुलझाना अभी बाकी है। आंगन की खामोशी में रत्ना देवी की आवाज अभी थमी ही थी कि पीछे से हल्के जूते की आवाज आई। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, कैजुअल जीन्स, सफेद टी शर्ट, कंधे पर कॉलेज बैग टांगे हुए। वो जाते जाते रुक गया। उसकी नजरें श्यामली पर पड़ी, थोड़ी झुकी हुई, पर चेहरे पर एक खामोश तनाव था। वो दो कदम और बढ़ा और साफ आवाज में बोला, श्यामली, अगर तुम्हें किसी चीज की कमी हो, कुछ भी चाहिए हो, तो मुझसे कहना, मैं ले जाऊंगा शॉपिंग, तुम्हें किसी के कहने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में केयर भी थी और हल्की सी बागी गर्मी भी। श्यामली कुछ बोलने ही वाली थी, पर उसके बोलने से पहले रत्ना देवी की तगड़ी शाही आवाज गूंजी, आर्यन। आर्यन ठहरा पर पीछे मुड़ा नहीं। रत्ना देवी ने झूला रोककर उसे सीधे कड़क स्वर में कहा, ये तेरी सौतेली माँ सही, पर माँ है और माँ के सामने यूं मर्यादा खराब नहीं करते। आंगन की हवा एक सेकंड को ठहरी, जैसे सब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। आर्यन ने धीरे से मुड़कर कहा, दादी, हम दोनों की उम्र बराबर है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसे माँ कहकर भी ऐसे बात सुननी पड़े। उसकी आंखों में चोट थी, वो चोट जो सिर्फ वो समझता था। रत्ना देवी ने आंखें सिकोड़ ली, उनकी शाही नजरें आर्यन पर टिक गईं। मर्यादा उम्र से नहीं, खून के दर्जे से चलती है बेटा। आर्यन के चेहरे पर नाराजगी और भी गहरी हो गई। उसने बैग कंधे पर टेक किया, सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। उसकी चाल तेज थी, जैसे हवेली की दीवारों में कैद होना उसे हर सुबह और भारी लगने लगा हो। वो निकल गया और उसके पीछे आंगन में फिर वही खामोशी फैल गई। रत्ना देवी ने श्यामली को कोई भाव दिए बिना देखा, जैसे कुछ सोच रही हूँ, पर बोल नहीं रही। श्यामली ने धीरे से सिर झुकाया और अंदर चली गई, दिल में एक नया बोझ लिए।